Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं घोरपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत पांचवें अध्याय में तीसरे मंत्र की व्याख्या है। एकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति सदेवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा सर्वादिशस्ऊर्ध्वमदश्च तीर्यक् प्रकाशयन् ब्राजते यद्वद् अनड्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वावान् अधितिष्ठत्ते कः यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनि पाच्याश्च सर्वान् परिणामयद्यः सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणाश्च सर्वान् विनियोजयद्यः। तो उपनिषद के ऋषि उस रहस्य को प्रकट करते हैं जो ये विश्व किस तरह बना है। विश्व एक जाल है, माया उपादान कारण होने के कारण इसको माया जाल कहते हैं। ये माया जाल किसने बुनी? देवः, एका देवः, अकेला उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा ने ये माया जाल बुनी है। अश्विन क्षेत्रे और वो परमात्मा ये जाल उसी के लिए बुनी है जो परमात्मा को नहीं चाहते। जो परमात्मा से विमुख हैं उनको फंसाने के लिए परमात्मा ने ये जाल बुनी है। परंतु जो परमात्मा अभिमुखी हैं, मुमुक्षु हैं, जाल से मुक्त होना चाहते हैं, उन मुमुक्षुओं के लिए वो परमात्मा खुद इस जाल का संहार भी कर देता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि परमात्मा, इस जाल में मैं फंसा हूं, मैं जाल से निकलना चाहता हूं, जाल से मैं निकलना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए ये जाल हटा दो। तो परमात्मा में ये क्षमता है कि जाल को निर्माण भी करता है और इस जाल का संहार भी करता है। हमने कल संकेत किया था, जैसे मकड़ी अपनी ही क्षमता से अपने शरीर में से धागा निकालकर जाल बनाती है और उस जाल को वो खुद संहार करती है। परमात्मा की सृष्टि और संहार का यही एक प्रक्रिया है। उसके विपरीत एक और जीव है, परमात्मा के बनाए हुए है जाल में संतुष्टि नहीं करता। वो संसार में बहुत लोग ऐसे प्राणी हैं जो परमात्मा की सृष्टि से संतुष्ट नहीं है, और जो परमात्मा की सृष्टि से संतुष्ट नहीं है वही व्यक्ति संसार के दुख और सुख में पड़ता है। संसार के विषयों के संसारिक सुख दुख में फंसने वाला जीवात्मा वही सुख दुख में फंसता है जो परमात्मा की सृष्टि में संतुष्टि नहीं है, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए पदार्थ में संतोष नहीं करता। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में उसको संतुष्टि नहीं है, इसीलिए वो नया सृष्टि करना चाहता है और करता है। परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए पदार्थों में जीवात्मा अपनी भावना से उसको भोग्य बनाना चाहता है। परमात्मा सृष्ट पदार्थों को जब वो जीवात्मा भोग्य बनाना चाहता है तब वो उसकी अपनी स्वतंत्र सृष्टि कहलाती है। हमने कल संकेत किया था, विद्यारण्य मुनि जी पंचदशी में दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। हमें जो दिख रहा है, हम जहां रह रहे हैं, जिस जगत में रह रहे हैं, वहां दो प्रकार की सृष्टि का अस्तित्व है। एक परमात्मा की सृष्टि का अस्तित्व है जो परमात्मा ने स्वयं अकेले बनाया है, वहीं एक और सृष्टि है जो जीवात्मा ने अपने स्वतंत्र शक्ति के द्वारा बनाया है। इसको बड़ा सुंदर दृष्टांत से विद्यारण्य मुनि जी ने लिखा है, और इसमें से जो परमात्मा की सृष्टि है वह जीवात्मा के सुख दुख का कारण नहीं, जीवात्मा के सुख दुख का कारण उसकी अपनी ही सृष्टि है। ये स्पष्ट किया है बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर। एक दृष्टांत, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणी परमात्मा की सृष्टि है। तुम्हें तुम्हारे मां बाप ने नहीं बनाया, वो तो परमात्मा ने ही बनाया है। हमें हमारे मां बाप ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया। संसार में जितने भी बालक बालिकाएं हैं, युवा युवतियां हैं, स्त्री पुरुष हैं, मनुष्य जिसको समग्र रूप में मनुष्य कहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग यावत सृष्टि परमात्मा की है, उसको कोई जीवात्मा ने नहीं बनाया। लेकिन जीवात्मा ने क्या बनाया उसमें, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। परमात्मा ने उत्पन्न किया हुआ जो एक पुरुष था, उसमें उस जीवात्मा ने पतिपना का आरोप किया। पुरुष तो परमात्मा की सृष्टि है, पति परमात्मा की सृष्टि नहीं है। देखो कितना अंतर है। परमात्मा की जो सृष्टि का आकार प्रकार ये जितना भी जो कुछ है वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें एक और सृष्टि है वो पति। परमात्मा की सृष्टि एक स्त्री है, लेकिन उसमें एक और सृष्टि करता है जीवात्मा, वह सृष्टि है पत्नी का। पत्नी की कल्पना करता है, पत्नी की रचना करता है, पत्नी की भावना करता है। तो पैरेलल पर यह सृष्टि होती है जीवात्मा की। परमात्मा जो सृष्टि करता है उसमें अपने भोग्य बनाने के लिए जीवात्मा स्वतंत्र दूसरी सृष्टि करता है। जैसे परमात्मा ने तो गेहूं बनाया, अपने कहीं देखा है कि आटा अपने आप बन गया है? है? आटा किसने बनाया? तुमने बनाई। गेहूं किसने बनाया? परमात्मा ने। जमीन में वपन कर देने के बाद गेहूं तो अपने आप ही पैदा होता, वो तो परमात्मा की सृष्टि है। किसी खेत में आटा पैदा हुआ है? लेकिन उस परमात्मा की सृष्टि जो गेहूं है उसको अपने भोग्य करके बनाने के लिए उसने फिर उसको आटा बनाया। परमात्मा ने रोटी नहीं बनाई है, रोटी जीवात्मा ने बनाई है। आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की सृष्टि को छोड़ता नहीं है, परमात्मा की ही सृष्टि का उपभोग करके वो अपनी नई रचना करता है। वो उसी में इसी तरह मिट्टी तो परमात्मा की बनाई हुई है, वो परमात्मा की सृष्टि है, लेकिन जीवात्मा उसमें घड़ा बनाता है। मिट्टी को छोड़ता नहीं है, उसी परमात्मा के बनाए हुए मिट्टी को लेता है और जीवात्मा मिट्टी से संतुष्टि नहीं हुई उसको, तो फिर उसको स्वतंत्र रूप से एक और सृष्टि करनी पड़ी, घड़ा बनाना पड़ा। परमात्मा ने घड़ा नहीं बनाया है। जैसे परमात्मा ने मिट्टी बनाई जीवात्मा ने घड़ा बनाया, उसी तरह परमात्मा ने पुरुष बनाया और जीवात्मा ने पति बनाया। परमात्मा ने स्त्री बनाया, जीवात्मा ने पत्नी बनाया। ये फर्क है जीवात्मा की सृष्टि और परमात्मा की सृष्टि में। यहां बैठे जितनी भी हमको तो स्त्री और पुरुष दो ही वर्ग दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनको स्त्री और पुरुष से दो ही वर्ग के साथ साथ में पति और पत्नी भी दिखता है। बस समझ गए ना, हमारी दृष्टि में ये दो सृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ईश्वर की सृष्टि है पति यानी पुरुष और स्त्री। हमारी दृष्टि में यहां कोई न पति है न कोई पत्नी है, क्योंकि हमने वो सृष्टि नहीं की। हमको परमात्मा की सृष्टि में संतुष्टि है, स्त्री और पुरुष समाज में है, इतनी में हमको संतोष हो गया। संसारी को संतोष नहीं हुआ, उस पुरुष को पति बनाना पड़ा, उस स्त्री को पत्नी बनाना पड़ा। हमें संतुष्टि है कि ईश्वर की संतति जो जगत में जितनी है सब ईश्वर की संतति है, उसी में हमको संतोष है। लेकिन कुछ संसारियों को उसमें संतोष नहीं हुआ, तो उस ईश्वर की संतति को अपना बेटा बनाना पड़ा। ये बेटा उसकी पैदाइश है, जीवात्मा की पैदाइश है, उसके अपनी स्वतंत्र। ये मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया, मैंने पैदा किया, ये मेरी बेटी, मैंने जन्म दिया, मैंने पैदा किया, ये मेरी बहन। बहन ईश्वर की सृष्टि नहीं है। ईश्वर की सृष्टि एक स्त्री के रूप में हुई है और उसको व्यक्ति क्या करता है, मेरी बहन। बहन की सृष्टि जीवात्मा की अपनी है, भाई की सृष्टि जीवात्मा की अपनी है, गुरु की सृष्टि जीवात्मा की अपनी है, चेले की सृष्टि जीवात्मा की अपनी है। तब संसार में कोई परमात्मा की सृष्टि नष्ट होती है, कोई पुरुष मरता है या कोई स्त्री मरती है या कोई बेटा मरता है या कोई बेटी मरती है या कोई बहन मरती है या कोई भाई मरता है, आखिर मूल रूप में तो ईश्वर की सृष्टि का संहार हुआ, नाश हुआ है। लेकिन उस घटना से सभी लोग दुखी नहीं होते। वही दुखी होता है कि उसके साथ में उसका अपना सृष्टि जुड़ा हुआ हो, तब जाकर वो दुखी होता है। कोई व्यक्ति मरा एक्सीडेंट में, देखा कौन मरा, बोले कोई एक पुरुष है, व्यक्ति है, स्कूटर चला रहा था, दुर्घटना हो गई, मर गया। कोई एक पुरुष है, कौन मरा, बोले कोई एक स्त्री है, जा रही होगी कहीं, किस कारण से मर गई, औरत मर गई है, एक पुरुष मर गया है। कोई रोता नहीं है वहां खड़े होकर। जब वो सुन लेता है कि तुम्हारा पति मर गया, पुरुष मरने का दुख नहीं है उसको। किसके मरने का दुख है? पति मरने का दुख है, पुरुष मरने का दुख नहीं है, स्त्री मरने का दुख नहीं है। किसके मरने का दुख है? पत्नी मरने का दुख है। कोई स्त्री मरी हुई है तो मरी हुई है, स्त्री मरी है, मरती है, पैदा होते हैं, मरते हैं, उसको लेकर कोई नहीं रोता है। जब उसको पता चलता है कि तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी पत्नी है, तब देखता है अरे मेरी पत्नी मर गई। आकार प्रकार तो सब ईश्वर का निर्माण किया हुआ है, उसके नाक, उसके कान, उसके मुंह, उसके सिर, उसके पांव, उसके हाथ, ये सब किसकी सृष्टि है, किसने बनाया? वो परमात्मा ने। वो जैसा का तैसा ही है, वैसा ही है। उसको जब देखता है और जब ये निश्चय करता है कि मेरी पत्नी मरी है, तब फिर रोने लगता है। तो सुख और दुख का कारण जीव की अपनी सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि नहीं है। अपनी सृष्टि करता है, वही अपनी रचना अनुकूल हो जाता है तो सुखी होता है, अपनी ही रचना प्रतिकूल हो जाता है तो दुखी होता है। संसार में बहुत सी औरतें जो तुम्हारे कहना मानती नहीं है, वो अपने ही ढंग से चलती है, अपने ढंग से रहती है, अपने ढंग से खाती है, अपने ढंग से जीती है, उसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो तुमने ये मेरी पत्नी है कहा, वो फिर अपने ढंग से जीने लग जाए, अपने ढंग से खाने लग जाए, अपने ढंग से रहने लग जाए, तुम्हारे अनुकरण न करे, तुम्हारी आज्ञाकारी न होए, तो तुम उसके अपनी ही पत्नी, अपने आप तुमने कल्पना करके बनाई हुई पत्नी, वो तुम्हारे बरखिलाफ तुम्हारे प्रतिकूल होने लग जाएगी, तो तुम फिर दुखी होगे, बैठे बैठे रोने लग जाओगे। तुम्हारा पति संसार में कोई भी पुरुष कहीं भी रहता है, स्वतंत्र रहता है, जैसे भी रहता है, अपने ढंग से रहता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस पुरुष में हमने पति की कल्पना की है, वो व्यक्ति यदि स्वच्छंद होने लग जाए, अपने ढंग से रहने लग जाए, हमारा कहना न माने, हमारा ख्याल न रखे, हमारे अनुकूल न होवे, हर बात पर प्रतिकूलता होने लग जाए, तो फिर दुख की सृष्टि तो वहां से होती है। दुख किससे हुई? पति से हुआ कि पुरुष से हुआ? दुख किससे हुआ? पत्नी से हुआ कि स्त्री से हुआ? नौकर हम जिसमें वहां नौकर की सृष्टि कर लेते हैं फिर वो प्रतिकूल होने लगता है तो हमको दुख होता है, जिसमें हम नौकर की सृष्टि कर लेते हैं वो जब अनुकूल होता रहता है तो हमको सुख होता है। नौकर हमारी सृष्टि है, मालिक हमारी सृष्टि है, मालिक परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। तुम किसी नौकर के मालिक बने हो तो तुम अपने ढंग से मालिक बने हो, परमात्मा ने तुम्हें किसी का मालिक बनाकर नहीं भेजा है। परमात्मा ने तुम्हें कभी किसी का नौकर बनाकर नहीं भेजा है, नौकर तुम अपने ढंग से बने हो। तब नौकर बने हो तो फिर कौन दुखी होगा? मालिक दुखी होगा, उसके अनुकूल नहीं होगे तो, क्योंकि तुम्हें नौकर उस मालिक ने बनाया, उसकी सृष्टि है। और नौकर दुखी होगा कब? मालिक अनुकूल नहीं होता है तो, क्योंकि नौकर ने मालिक बनाया, मालिक ने नौकर बनाया। मनुष्य तो परमात्मा की सृष्टि है, नौकर मालिक परमात्मा की सृष्टि नहीं है। मनुष्य परमात्मा की सृष्टि है, स्त्री पुरुष परमात्मा की सृष्टि नहीं है, पति पत्नी परमात्मा की सृष्टि नहीं है। मनुष्य परमात्मा की सृष्टि है, भाई बहन ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये जीवात्मा की सृष्टि है। मिट्टी परमात्मा की सृष्टि है, घड़ा जीवात्मा की सृष्टि है, धातु परमात्मा की सृष्टि है, लेकिन उससे बने हुए बर्तन सब जीवात्मा की सृष्टि है। जब उस परमात्मा के सृष्टि रूप जो धातु है उसमें जीवात्मा जब बर्तनों का निर्माण करता है और उसको जब तुम खरीद के मेरा कहते हो तो तब उसके टूटने फूटने पर तुम्हें दुख होता है या सुरक्षित रहने पर तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। धातु तो फूटने पर भी कहीं नहीं गया है, बनने पर भी कहीं नहीं गया है, फूटने पर भी कहीं नहीं गया है। घड़ा तो बनने पर भी कहीं नहीं गया है, मिट्टी का मिट्टी ही है, फूटने पर भी कहीं नहीं गया है, मिट्टी की मिट्टी है, मिट्टी कहीं नहीं गई है। जो परमात्मा की सृष्टि का तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है, तुम मरते हो तो भी परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परमात्मा की सृष्टि में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा जानता है कुछ भी इसमें से जाता नहीं है, कुछ भी इसमें से नुकसान नहीं होता। परमात्मा जानता है शरीर की दृष्टि से पंचभूत पंचभूत में ही रहते हैं, सचेतन की दृष्टि से चेतना नित्य है, तो परमात्मा क्यों रोएगा तुम्हारे मरने पर? है किसी के मरने पर परमात्मा क्यों रोएगा? क्योंकि परमात्मा जानता है चेतना की दृष्टि से जीवात्मा नित्य है, मरता नहीं है। परमात्मा जानता है कि शरीर की दृष्टि से पंचभूत नष्ट होता नहीं है, इसलिए परमात्मा किसी के उत्पत्ति से न प्रसन्न होता है न नष्ट होने से दुखी होता है। जीवात्मा इस रहस्य को नहीं जानता, जीवात्मा इस रहस्य को न जानने के कारण न मानने के कारण वो ये अपेक्षा रखता है कि शरीर नित्य होना चाहिए, दुनिया मरते तो मरे मेरा पति नहीं मरना चाहिए, दुनिया मरे तो मरे मेरी पत्नी नहीं मरना चाहिए। दुनिया जो कुछ हो, ईश्वर की सृष्टि जो कुछ हो, लेकिन मेरी सृष्टि सुरक्षित मेरे आगे मेरे उपभोग्य होना चाहिए, ये अपेक्षा जब वही अनुकूल होता है प्रसन्नता, प्रतिकूल हो जाता है तो दुख। एकेकम जालम बहुधा विकुर्वन अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्ते सदैव, यही तो जाल है। अस्मिन् क्षेत्रे इसी शरीर में परमात्मा अनेक संबंधों की रचना कर देता है। और ये देव परमात्मा, यहां देव शब्द का अर्थ व्यष्टि में, प्रज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा भी इसी तरह जाल बुनता है जिस तरह परमात्मा बुनता था। लेकिन परमात्मा जिस जाल को बुनेगा वो उसमें नहीं फंसेगा, जीवात्मा जिस जाल को बुनेगा वो उस फंस जाएगा। जैसे दो कीड़े का दृष्टांत दिया जाता है, एक मकड़ी वो परमात्मा की उपमा दी जाती है, वो बुनाता है और संहार भी करता है इसीलिए फंसता नहीं, और दूसरा वो रेशम का कीड़ा, वो अपने मुख से धागा निकालता है और अपने शरीर में लपेट लेता है और फंस जाता है और मरता है, वो दुखी होता है। वो रेशम का कीड़ा पीड़ित और दुखी हुआ किसके चलते? ईश्वर के सृष्टि रूपी धागे से नहीं, फंसकर नहीं, अपने मुख से निकला हुआ धागे से फंसकर वो दुखी हुआ। ईश्वर के मुख से निकला हुआ धागे से फंसकर दुखी हुआ वो, तो यही समझने की बात है। भूय सृष्ट्वा पतयस्तथे सह, परमात्मा के लिए यहां तीन विशेषण दिया गया है। पहला विशेषण है देवाह, दूसरा विशेषण दिया गया है ईसा, और तीसरा विशेषण दिया गया है महात्मा। परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है समर्थ।